ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सुकन्या चवनम प्राप्य पतिम परम कोपनः। शब्दार्थ इस प्रकार है, सुकन्या राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या ने शवरम शवन ऋषि को प्राप्य पाकर पतिम कोपनम जो सदैव अत्यंत क्रुद्ध रहता अत्यंत क्रुद्ध रहता था प्रीणयामास उसको प्रसन्न किया चित्तज्ञ अपने पति के मन की अपने पति के मन की बात जानने वाली अप्रमत्ता अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी घबराए बिना सेवा करके अनुवाद और तत्पर इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की चाय। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उसके मनोनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। तात्पर्य, यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसे महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहिए चाहता है। ऐसे व्यक्ति किसी के आगे घुटने झुकने नहीं घुटने नहीं टेक सकता। अतएव चवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उसकी मनोवृत्ति को समझ गई और अतएव उसने तदनुसार बर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति की मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले वार्तालाप में भी इसे देखा जा सकता है कि यद्यपि ये रानियाँ बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियाँ थीं, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितना भी महान क्यों ना हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति के समान क्रोधी बन जाए तो उनका गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा या अंत में पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी छोटी घटनाओं होने पर गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से एक से कोई भी विवाद विच्छेद के विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियम में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। यह तो स्त्री की निपुणता है कि जिसे वह अपने कितने ही क्रोधी या शमश पति के हृदय पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यद्यपि चवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पिता मां होने के योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार वह आज्ञाकारिणी एवं साध्वी पत्नी थी। आज्ञाकारिणी एवं हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया किस प्रकार सुकन्या के पिताजी ने रेती राजा ने उन्होंने सुकन्या को कन्यादान विवाह संस्कार में चवन ऋषि को दिया। चवन ऋषि जो हैं चवन मुनि वो वृद्ध थे और वृद्ध पति प्राप्त वृद्ध कन्या अपनी जवान युवती कन्या को राजा होने पर भी एक वृद्ध ऋषि को देने पर भी सुकन्या वो कुछ भी कंप्लेंट नहीं किया। जैसे मेरे पिताजी ने जो भी निर्णय किया है उसको मैं स्वीकार कर लूंगी। ये विवाह का सबसे पहला विचार करना चाहिए हर एक स्त्री को या हर एक कन्या को। विवाह के लिए पिता के ऊपर, माता पिता के ऊपर निर्भर करना चाहिए। उनके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी माता पिता मेरे लिए जो भी निर्णय करेंगे मेरे लिए अच्छा है। उन्होंने मुझे जन्म दिया, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था दूध पिलाया मेरी माँ ने, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे हर चीज़ देखभाल किया। तो इस क्षेत्र में भी किससे विवाह होना चाहिए, कौन से स्कूल में भेजना चाहिए, क्या शिक्षा देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ मैं अपना बुद्धि नहीं लगाए हुए मेरी माता पिता ने बुद्धि लगा के मुझे बड़ा किया। अगर ऐसा है तो मेरे लिए कौन योग्य पति होंगे उसको चुनने में भी उनका ही बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। अपनी मनमानी अगर कोई व्यक्ति खास करके पति या पत्नी को वो चुन लेता है तो निश्चित रूप में वो उनका जीवन, पारिवारिक जीवन कभी ठीक नहीं रहेगा। ये 100% रह भी गए तो उनका जो गृहस्थ जीवन में जो संपन्न करना चाहिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भक्ति, वो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे एक कन्या बालिका वो बड़ी होती रहती हैं, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए कि तुम्हारा विवाह करने का जवाबदारी जो है, वो कन्या का विवाह करने का जवाबदारी जो है वो माता पिता का, खास करके पिता का है। तो अगर वो जिम्मेदारी अगर खुद निभाना चाहती है, मैं चुन लूँगी, मैं अपना वर को खुद ढूंढ लूँगी, तो आजकल जो है जो चल रहा है लव मैरिज, असलियत में इसको जो लव मैरिज बोलते हैं लव मैरिज नहीं है बल्कि लस्ट मैरिज है, उसमें विवेक खत्म हो जाता है दोनों का। क्योंकि हमारे लिए कौन अच्छा है क्या अच्छा हमारे जीवन के लिए, जब इस क्षेत्र में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। जो हमारे जो वरिष्ठ होते हैं, ज्ञान में वरिष्ठ होते हैं, वयो वरिष्ठ होते हैं, वयोवृद्ध होते हैं, यानी हमारे माता पिता जो अनुभवी होते हैं, उन्हीं लोगों को मालूम है हमारे लिए क्या हित है। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमको पालन पोषण किया, इतना सब कुछ करने के बाद कि हमारे लिए कौन अच्छा है क्या अच्छा है वो हमसे अच्छा वो जानते हैं। लेकिन पता नहीं आजकल के युवक और युवतियों में इस प्रकार का भाव आ गया है कि हमारा जीवन हम खुद ढूंढेंगे, हमारा जीवन हम खुद बिताएंगे, हम किसके साथ जीने वाले हम खुद ढूंढ लेंगे। तो ये बात अभी क्यों आ रहा है, हमारा जीवन हम खुद ढूंढ लेंगे, हम खुद कर लेंगे। जहाँ 5 साल के थे, 6 साल के थे, वो समय क्यों नहीं सोचा? वो समय मम्मी मम्मी पापा पापा करके आते थे, वो खिला वो बोला वो करो सब किया। अभी जब आप बड़े हो गए, सो कॉल्ड बड़े हो गए, तो उस समय खुद अपना जीवन का निर्णय खुद लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, महान घातक चीज़ कर देते हैं, वो है विवाह के पहले तथाकथित प्रेम। प्रेम अंधा होता है और ये अंधा जो होता है अंधकार में, अंधापन में, उनको कौन उचित है कौन क्या है पता नहीं लगता। एक दूसरा का शरीर को देख लेते हैं, एक दूसरे के शरीर से आकर्षित हो जाते हैं, होने के बाद एक दूसरे को बोलते हैं, सोचते हैं कि बस मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो सोचता है कि इनसे प्रेम करता हूँ, और जिन माता पिताओं ने पालन पोषण किया उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये जो है इस समाज में सबसे बड़ा दोष है, इसी के वजह से सारे सामाजिक समस्याएं आ रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं का एकमात्र कारण है, खास करके पारिवारिक समस्याओं का एकमात्र कारण है वो जो युवती और युवक, इन दोनों को माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद के बिना आप कोई भी कितना भी अच्छा कार्य करो उसका परिणाम घातक होगा। कितना भी आप लोग सोचो कि बहुत अच्छा काम है वो घातक होगा। खास करके विवाह संस्कार जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बड़ों का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद के बिना जब इस प्रकार के विवाह होता है वो जीवन जो है बहुत ही खराब जीवन होने वाला है। इसलिए हर एक खास करके जो कन्याएं होती हैं उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। जो लड़के होते हैं वो उनको क्या प्रशिक्षण दे सकते हैं, वो तो ऐसे ही शास्त्र पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं अपने जीवन में। तो कन्याओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। कन्याओं को क्या प्रशिक्षण देना चाहिए? कोई पर पुरुष के साथ चर्चा नहीं करना, बात नहीं करना। ये प्रशिक्षण हर एक माता पिता का जिम्मेदारी है। और जब बात आती है उनको आश्वासन देना चाहिए, हे बेटी तुम्हारा विवाह करने का जवाबदारी हमारा है। इस प्रकार आश्वासन देके उनको संरक्षण करते हुए जीना चाहिए। भले ही आजकल की आधुनिक सभ्यता बोले, कुछ भी बोले, स्वतंत्रता होना चाहिए, नहीं ऐसा दबा के नहीं रखना चाहिए, ऐसे घर में ऐसा नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना, कुछ भी बोले, लेकिन उस उनकी जो बोली में कोई आधार नहीं है। अगर आधार है तो शोषण मात्र एक आधार है। शोषण मतलब अगर स्त्री, अगर कन्या अकेली अगर बाजार में घूमे, उनको स्वतंत्रता दिया जाए, स्वतंत्रता मिले तो अकेली घूमेगी, तो अन्य जो दुष्ट लोगों को शोषण करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार दुष्ट लोग जो हैं वो एक समाज में अच्छाई के नाम पे सबको समान हक होना चाहिए, इस प्रकार के अनेकों अच्छाई के नाम पे शोषण की प्रवृत्ति को पीछे रखते हुए वो अनेकों इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या समस्या है? लड़का और लड़की समान है? कभी समान नहीं है। देखिए लड़का बाहर जाता है, वो जब मान लो खेल कूद करके कोई करके मार खाता है, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? वो गिर जाता है, उठ के वो अपने आप झाड़ के वापस आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़की का स्वभाव अलग होता है, इसलिए उनको लड़कियों को देखभाल करने, उनको पालन करना, पोषण करना ये अलग है, और जो लड़के होते हैं घर में उनको पालन पोषण करना अलग है। लड़का लोग अगर घर से बाहर नहीं जाता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसको 2-3 लाफा मार के जाओ बाहर जाके खेल के देख के आओ, दुनिया देख के आओ। लेकिन लड़की को नहीं बोला जाता दुनिया देख के आओ, लड़की को बोलना चाहिए घर में काम करो, घर में रहो, संरक्षित रहो, संरक्षण देना। जब ये बात आती है लोग सोचते हैं क्या हम किसी से कम नहीं, हम भी तो है कुछ, हम भी तो आजकल देखो कितने भी पोस्टर दिखाई पड़ता है बाहर, जो कोचिंग क्लास वाला रखते हैं ना कि हमारे कोचिंग क्लास से सबको 90% मिला है, 95 मिला, 97 मिला है, फर्स्ट सेकेंड रहा है। हम देखो पहला 10 रैंक लड़कियों का ही होता है, हाँ है कि नहीं, बाद में कोई दो तार लड़का होगा बीच में। तो ये देखो हम किसी से कम नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं, ये बात गलत है। भले ही कितना भी बुद्धि भी क्यों ना हो, एक कन्या कन्या होती है, कितना भी मूर्ख व्यक्ति भी क्यों ना हो, एक युवक युवक होता है, लड़का लड़का होता है। ये वेदों में हमारे शास्त्रों में जो भी बताया गया है वो सिद्धांत को जब तक हम पालन नहीं करेंगे, आधुनिकता के नाम पे आप कुछ भी करने जाएंगे वो उसका जो हमारे जो पर असर है वो उसका जो रिएक्शन है उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए स्त्रियों को खास करके अगर मान लो लड़का गलती करता है, वो माता पिता को इतना चिंता नहीं होती थी, अगर लड़की कहीं गलती कर देती है बड़ी चिंता होती है। क्यों? क्योंकि उस परिवार का जो यश है उसको संसार में समाज में बढ़ाने वाली स्त्री है, इसलिए यश एक स्त्री का गुण होता है। एक परिवार का यश को समाज में स्थापना करने वाली है स्त्री, क्योंकि वो स्त्री जो है, वह कन्या जो है, बालिका जो है, वो दूसरे घर में जाने ही वाली है। तो दूसरे घर में जब जाएगी तो आपकी जो घर की जो ख्याति है वो कैसे टिका रहेगा, उनकी लक्षणों के ऊपर टिका रहेगा। इससे जो प्रशिक्षण जो है बड़े कड़ाई से लड़कियों को दिया जाता है, लड़कों को प्रशिक्षण दी जाती है विनम्रता में, शिक्षा में, लेकिन वो माता पिता नहीं वो बल्कि वो गुरु देते हैं। तो अभी बात हो रही सुकन्या की हो रही है, इसलिए हम लड़कों की बात नहीं करेंगे, बालिकाओं की बात कर रहे हैं। उनको एकदम बिल्कुल स्वेच्छा नहीं देना, बिल्कुल घर में ही रख के उनको प्रशिक्षण देना ये वैदिक सभ्यता है। तो आप बोलोगे ये कैसे, ये तो अन्याय हुआ। अगर कोई व्यक्ति को, कोई वस्तु को आप रक्षा कर रहे हो उसमें कौन सा अन्याय है? उसमें कोई अन्याय नहीं है। उल्टा बात यह है आप उसी वस्तु को, उसी व्यक्ति को रक्षा करोगे जो आपके लिए अमूल्य है। आप उस वस्तु और उस व्यक्ति को रक्षा इसलिए नहीं देते हो क्योंकि कमजोर है। ये भौतिकवादियों की आजकल के आधुनिकवादियों का वाद है, विवाद है। वो कहते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है इतनी नियम कानून कन्याओं को इसलिए कहा गया क्योंकि वो इनको कम समझते हैं, कम शक्तिशाली समझते हैं, इस आधार पे उनको घर में सुरक्षा दे के दिया नहीं जाएगा, कम शक्तिशाली इसकी वजह से नहीं है। अगर देखा जाए नारी शक्ति इतना बड़ा है पूरा संसार को जला सकता है, वो कम शक्तिशाली नहीं है। सारे पुरुष काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे बताओ, उसके पीछे स्त्री है तभी तो काम कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, लोग सोचते हैं वुमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या है, उसको तो फ्रीडम, उनको तो खुला छोड़ दो, जो चाहे करने दो, पुरुषों के समान रहते, एम्पावरमेंट नहीं है उनका, शोषण। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जहाँ जहाँ स्त्रियों को ताकत पुरुष के समान जीने की प्रोत्साहन हो रहा है उतना स्त्रियों का शोषण हो रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे नारी शक्ति आंदोलन, क्या बोलते हैं उसको, नारी सशक्तता, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन लिबरेशन, नारी मुक्ति आंदोलन, ये सब केवल स्त्रियों को शोषण करने की एक योजना है। उसके पीछे पुरुषों का हाथ है, दुष्ट पुरुषों का हाथ है, ताकि ये दो चीज़ें नारियों की नारी मुक्ति आंदोलन और वुमेन एम्पावरमेंट, ये दो चीज़ के पीछे कुछ दुष्ट पुरुषों का हाथ है जो चाहते हैं कि इन दो कार्यों के द्वारा, ये दो प्रस्ताव के द्वारा हम नारियों को कैसे शोषण करें। तो वैदिक सभ्यता में बालिकाओं को, कन्याओं को सुरक्षा दी गई है, उनको कमजोर नहीं समझा गया है, उनको अमूल्य समझा गया है। कमजोर व्यक्ति को रक्षा नहीं है, इधर अमूल्य व्यक्ति को रक्षा दिया जाए। जैसे एक उदाहरण होता है, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सिक्योरिटी होता है कि नहीं, क्यों सिक्योरिटी होता है, कमजोर है क्या, नहीं, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है इसकी वजह से उसको सिक्योरिटी दिया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का कहीं जाना है उसका रूट निर्धारित होता है, कौन से गाड़ी में बैठेंगे, कौन से कहाँ जाएगा, वो अपना मनमानी नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर होने पर भी वो सिक्योरिटी बोलेगा आपका ये रूट ये निर्धारित हो चुका है, क्यों, इतना शक्तिशाली होने पर भी वो अपना मनमानी रूट पे नहीं जा सकता। वो ड्राइवर को नहीं बोल सकता अभी थोड़ा राइट टर्न लेना, इधर जाके घूम के आते हैं, नहीं सकता है, ये रूल है तो पालन करना ही पड़ेगा, क्यों, अरे मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, हाँ प्राइम मिनिस्टर इसलिए इसलिए रूल है, क्यों, हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो। तो कन्याएं जो हैं हमारे घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके वजह से उनको सुरक्षा दी जाती है। घर में कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई फटा हुआ कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको ऐसे ही फेंक दोगे, बाहर रखोगे, ठीक है, कोई ले लिया जो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके घर में डायमंड है, ज्वेलरी है, सब क्या करोगे, उसको घर में छुपा के रखोगे। इसलिए कन्याओं को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है क्योंकि वो अमूल्य है। जैसे हमारे जेवर होते हैं, हमारे घर में जैसे अमूल्य वस्तुएं होते हैं, डायमंड होता है, सोना होता है, वो अमूल्य होता है, उसको तिजोरी में लॉक करके रखते हैं, ऐसे थोड़ी ना ऐसे फेंकते रहते हैं, हाँ ठीक है जाओ जो करना कर लेना, सबको एक्सपोज थोड़ी ना करते, नहीं करते। ये जो स्त्रियों को घर में रख के, अगर घर में बाहर जाएंगे तो माताओं के साथ जाएंगे, उनकी माँ के साथ जा, अकेले घर से बाहर नहीं, तो सहेलियों के साथ जा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा घातक चीज है। तो मंदिर जा सकते हैं, नहीं अकेले मंदिर नहीं, माँ के साथ ही जाना मंदिर भी, ये वैदिक सभ्यता है। ये जब तक ये पालन नहीं करेंगे तब तक समाज में दोष बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। देखिए कुछ जगह, कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने कहा, आजकल समाज में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि स्त्रियां अकेले बाहर जाती हैं, ये ठीक नहीं है, उसके ऊपर बड़ा विवाद हो गया। तो ये बात उन्होंने जो कहा सही बात है, ऐसा कैसे वो अकेले कहीं भी स्वेच्छा से घूम सकती है, नहीं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो घर को लॉक करते हो कि नहीं, लॉक करते, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है चोर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, मेरे घर को सुरक्षित करना है। उसी प्रकार अपनी पुत्रियों को रक्षा करना सबसे पहला माता पिता का जिम्मेदारी है, भले ही वो पुत्री को अच्छा लगे ना लगे, कर्तव्य है, कर्तव्य महत्वपूर्ण है। हमको क्या अच्छा लगता है, हमको क्या अच्छा नहीं लगता, वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा कर्तव्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। कर्तव्य क्या है, अगर आपकी बेटी सुनती नहीं है तो लाफा मारो चलेगा, लेकिन उसको शिष्टाचार में नहीं, क्योंकि ये स्त्रीयेषु दुष्टाश्वासनेया जायते वर्ण संकरा। अगर समाज को ठीक रखना है वो कन्याओं को शिष्टाचार में रखना होगा। अगर कन्या शिष्टाचार में रहेगी वो लड़कों को कोई मौका तो मिलेगा नहीं, क्या करेंगे, वो तो घर में आराम से बैठ के पढ़ाई कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। वो उनके अंदर दुष्टता होने पर भी वो दुष्टता को व्यवहारिक रूप में लाने के मौका ही नहीं है, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, इसलिए चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है किस प्रकार बालिकाओं को शिष्टाचार पे रखना, उनको वैदिक सभ्यता के अनुसार संस्कृति सिखाना, क्योंकि जब बालिका को सिखाओगे वो बड़ी होकर जब माँ बनेगी तब उनकी पुत्र को सिखाएगी। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है समाज का। तो सुकन्या की पिता शरियाती ने बहुत अच्छा किया था, इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं, ये आंसू का टपका आंसू भी नहीं गिरा, आंसू का बूंद भी नहीं गिरा, गिरा मेरी पिता ने कल किसके साथ शादी कराया, देखो किसके साथ कराया, कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे आया इधर सुकन्या चवनम प्राप्या, ये श्लोक में आया प्राप्या शब्द आया, प्राप्या शब्द के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण चीज बोला जा रहा है। जब विवाह होता है उस समय बहुत आनंद होना चाहिए, खुश होना चाहिए, किसको, उस स्त्री को या जो कन्या का जिसका विवाह हुआ है, भी स्त्री बन गई है, विवाह होने के बाद स्त्री हो जाती है, विवाह होने के पहले कन्या है, उस कन्या का जब विवाह तैयार होता है तो सबसे बड़ा सुख या आनंद का खुशी का मौका है। दूसरी ओर जब पुरुष का जब विवाह होता है, यानी जो लड़का का युवक का जो विवाह होने का प्रस्ताव होता है, विवाह हो रहा है, उस समय उसको मनुष्य बैठना चाहिए, अरे रे फंस गया मैं, लेकिन आजकल उल्टा होता है, वो सोचती है मेरे पिता ने जबरदस्ती शादी कराया मुझे नहीं करना था, और ये सोचता है बहुत अच्छा हो गया आज मेरा जीवन बन गया, वो खुद जाकर कार्ड भी बांटता आजकल। शास्त्र में कहा गया है जो वराया विष्णु रूपाय उदासीन कृष्णी, उसको उदासीन होना चाहिए, उदासीन मतलब अजी के जो होने तो क्या कर फंस गया, अभी ऐसा विचार करके शांति से बैठना चाहिए, उसको उसके अंदर जरा सा भी ऐसा हृदय में अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, उस प्रिया होना नहीं चाहिए, वो मिठाई नहीं बांटना चाहिए मेरा, कोई और बांटता है तो अलग बात, ये इसको ऐसे बैठा रहना चाहिए, पता नहीं क्या हो गया, जो ठीक है, यानी जिसके मन में विवाह करने की इच्छा नहीं है वही व्यक्ति विवाह के योग्य। अगर जिसके मन में इच्छा है तो समझ लो सुकन्या हो दुष्कन्या हो कितना भी कोई कन्या हो वो उसके ऊपर चढ़ बैठेगी पूरा जीवन उसको तबाह कर देगी, इट इज बाय नेचर्स। अगर जिसके मन में इस प्रकार, ये चवन ऋषि जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ, ए ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक चवन मुनि। देखिए चवन मुनि वो खुद कन्या को ढूंढने नहीं गए थे, मैं किससे शादी करूँ ढूंढ रहा हूँ। ये वो युवक है, ये वो लड़का जो सोचता रहता है मैं किससे शादी करूँ किससे शादी करूँ, उसको एक चुड़ैल मिलने वाली पक्का, उसको कोई स्त्री मिलने वाली नहीं है, ऐसा मिलने वाला पूरा जीवन खत्म करने वाली, ये 100% बात है, क्योंकि वो किससे शादी करो किससे विवाह करो ये विचार जो है ये असुरी राक्षसी है, ये उस विचार के अनुसार ही आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ये प्रकृति का नियम है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दीजिए समाज में आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों का, जिस लड़के ने सोचता रहा मैं किससे करूँ, क्योंकि वो असुरी प्रवृत्ति है, वो जो राक्षसी वो पिशाची पैशाची प्रवृत्ति है, जो युवक ये सोचता रहता है मैं किससे करूँ, मान लो सामने से आ गया, जैसे कन्या दान, एक कन्या को दान किया जाता है, दान किया जाता है मतलब जो दान दे रहा है वो कौन है, भिखारी है, वो भिखारी मतलब जो दान दे रहा है वो भिक्षुक है, भिखारी बोलना ठीक नहीं है, भिक्षुक है, वो भिक्षुक को कहाँ भिक्षा मिलेगा, कौन सा भिक्षा मिलेगा, वो ठीक नहीं है, कोई भिक्षुक का अधिकार कुछ होता नहीं है, कोई यही मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं। जैसे भगवत योग्य दैव योग्य जो मिला वो अपने कर्मों के अनुसार उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे अभी जैसे ब्रह्मचारी है, उनको जो भी किचन में बना उसको स्वीकार कर लिया, बस हो गया। ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो असुरी प्रवृत्ति, वो पैशाचिक प्रवृत्ति है। तो उसकी वजह से, इस प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से जितने भी तथाकथित पतियाँ हैं परेशान होते हैं, मुझे पता नहीं मेरे पति जो इतनी ऐसी है वैसी है, क्योंकि आपने चूज करने के लिए बहुत प्रयास किया था, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, इसलिए आपके अंदर जैसी प्रवृत्ति है भगवान ने उसी प्रकार की स्त्री को भेजा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको एकदम बिल्कुल डिसइंटरेस्ट है। च्यवन ऋषि जो है वृद्ध है, लेकिन ऋषि कर रहे थे कि उनके मन में है कोई ऐसा कोई इच्छा नहीं था, मैं उसके उससे करूँगा इससे करूँगा, ठीक है आ गए ठीक है अभी विवाह करना है तो कर लिया, कोई उस पर कोई समस्या नहीं है। उदासीन में ऐसे अपने ऋषि अपने अपने कार्यों में मग्न थे, कोई समस्या नहीं थी। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी खास करके लिखते हैं कि गृहस्थ जीवन या कैसे बिताना चाहिए उसका वर्णन उनको इधर प्राप्त होता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के समय विवाह होता है, विवाह संस्कार होता है। परसों जब क्लास हुआ था उसमें आपको इसके बारे में कहा था, मैरिज शादी विवाह, और आजकल तो मैरिज से पहले भी कुछ और है, वो क्या लव मैरिज है, लव होता है बाद में मैरिज होता है, अभी आजकल और एक भी आ गया लिव इन रिलेशन, नया नया कुछ आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। ये जो लिव इन रिलेशन हो ये सब जानवरों की प्रवृत्ति है, ये लव मैरिज भी जानवरों की प्रवृत्ति है, उस पर कोई अच्छाई नहीं उसके अंदर, क्योंकि ये जो आज आपसे कोई किसी से लव हुआ बाद में किसी और से होगा तो क्या कौन जिम्मेदार है उसका, कोई जिम्मेदार नहीं है। आशीर्वाद के बिना अवैधिक तरीके से करने से अनेकों समस्या, चाहे वो भौतिकवादियों की समाज में हो चाहे इधर तथाकथित भक्तों की समाज में हो, भौतिक प्रकृति जो है वो उसका नियम के हिसाब से चलता है। भक्त होने मात्र से प्रकृति के नियम बदली नहीं होते हैं। द मोड्स द मेटेरियल नेचर डजंट चेंज इज रूल्स फॉर डिवोटीज, तिलक धारण करने मात्र से वो प्रकृति के नियम बदली नहीं होते। तो वैदिक नियम सनातन है, उसको पालन करना अनिवार्य है। तो इसके बारे में कहा था शादी मतलब मौज मस्ती, जैसे ठीक है अभी मेरा किसी का दो लोगों का मेरा मित्र का शादी है मेरी सहेली की शादी, मतलब क्या है मौज मस्ती करने वाले दोनों, कितना दिन चलेगा तो लंबा समय तो चलने वाला नहीं है, उसके बाद तलाक तलाक तलाक। ये शादी कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये उर्दू शब्द है, ये मुसलमानों की सभ्यता है जिसके अंदर तलाक की बात कहा गया है, लेकिन अंग्रेजी में जो अब्राहमिक रिलीजन है जो ज्यूइश और क्रिश्चियन और इस्लाम, ये तीनों एक ही तीनों भाई है, झगड़ा करते रहते लेकिन तीनों भाई है, इनकी जो संस्कृति है ये जो संस्कृति में तलाक यानी डाइवोर्स की बात कही गई है, लेकिन वैदिक सभ्यता में वो नहीं कही गई है। प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं, देयर इज नथिंग लाइक डाइवोर्स इन द वैदिक सिस्टम। हाँ ये इसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा हो रही है, लोग कहते हैं हमारा देश सेक्युलर है, सेक्युलर मतलब क्या है कि रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन स्टेट अफेयर्स, जो धर्म है धर्म के नियम हैं वो संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो मुस्लिम मैरिज एक्ट ये बनाया था वो इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार बनाया, कुरान के अनुसार बनाया, शरिया लॉ के अनुसार बनाया, जिसके अंदर तलाक की व्यवधान है, लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स ला लिया है कि नहीं, और डाइवोर्स जो है वो अब्राहमिक रिलीजन से है, वो क्रिश्चियन कंसेप्ट है, वो मैरिज है, लेकिन हिंदू यानी सनातन धर्म में ये डाइवोर्स करके कोई चीज नहीं है। अब देखिए किस प्रकार हमारा संविधान भी हिंदू के नाम पे डाइवोर्स भी रख लिया है, हिंदू मैरिज एक्ट पे डाइवोर्स कहाँ से आया है ही नहीं, डाइवोर्स का चीज है ही नहीं। तो इसलिए बहुत ही गहरा विषय वस्तु है किस प्रकार ये सनातन धर्म को नाश करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वो षड्यंत्र को हम अभी भी स्वीकार करते हैं, ये सही है। जो भी संविधान में हिंदू के नाम पे चल रहा है वास्तविकता में हिंदू नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में डाइवोर्स नामक चीज है ही नहीं, अगर है तो संन्यास है अगर कुछ है तो संन्यास है, डाइवोर्स नामक चीज नहीं है। और संन्यास नाम सुनते डर जाते हैं, लेकिन डाइवोर्स दे लेते हैं। ये कौन सा न्याय है बताओ? है, अगर आपको सच में त्याग करना है पत्नी को करो, करके आ जाओ डंडा पकड़ो चलो बद्री चलो आश्रम में आ जाओ, वरना मरम गतो धर्म हरिमाश्रयेता, ये करना चाहिए। तो ये वाह, तो शादी और मैरिज, मैरिज तो क्रिश्चियन कंसेप्ट है, वो मैरिज शब्द इससे कभी भी कम से कम भक्तों की समाज में मेरी बेटी की शादी है, हमारा मैरिज हो रहा है, मैरिज एनिवर्सरी है, रोजी हमारा मैरिज एनिवर्सरी, आप आके कीर्तन करो, ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आसुरी सभ्यता से, राक्षसी सभ्यता से आए हुए शब्द है। अगर कुछ है तो वो है संस्कार, विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में आप एक एक पुरुष एक पत्नी को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। जब पत्नी को स्वीकार करता है वो पत्नी जो है वो बहुत खुश हो जाती है, खुश हो जाती है। कैसे स्वीकार करता है? जिस प्रकार एक गुरु शिष्य को स्वीकार करते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार पहले जमाने में कोई स्त्री को दीक्षा नामक चीज हुई नहीं करती थी, फिर प्रभुपाद जी ने दे दिया वो तो, क्योंकि समस्या ऐसा परिस्थिति था, क्योंकि कोई वर्णाश्रम धर्म था नहीं, कोई कुछ स्त्रियां थी क्योंकि कोई पति नहीं है, कुछ स्त्रियां पति होने के बाद पति भक्त नहीं है, ऐसे ही बस जी रहे हैं। तो कोई, आपने कभी देखा शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कोई स्त्री को दीक्षा दिया? ऐसा कभी दिखा नहीं। कोई बोल लेता है कि प्रभुपाद जी के बहन को दिया करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा फॉर्मली दिया नहीं है, कहीं कहीं दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि पति को दीक्षा देते हैं, पति जो है पति के गुरु, गुरु जो है पति के गुरु है, पति जो है वो पत्नी के गुरु। जिस दिन गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है, जितना शिष्य सुखी हो जाता है, आनंद होता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है, एक शरणागति, एक उनको एक शरण मिल जाता है, उस समय कितना शांति सुख को अनुभव करता है एक शिष्य। उसी प्रकार एक स्त्री विवाह के दिन जो है उनको इस प्रकार का शरण प्राप्त होता है। असलियत में एक कन्या जो है एक पति का शरण ले रही है, और उस समय एक पति क्या करता है, वो पति जो है उस दिन एक प्रण लेता है। ये प्रण जो है इसमें बड़ा गहरा फिलॉसफी है। ये सब चीजें वो अब्राहमिक रिलीजन में प्राप्त नहीं होता, शादी में नहीं होता और मैरिज में नहीं होता है। मांगल्यम तंतुनानेना मम जीवन हेतुना कंटे बंदामि सौभगे त्वं जीवे शरदत सताम, ये मंत्र को उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र एक प्रकार का एक प्रतिज्ञा है। ये पति क्या कहते हैं उस दिन वो एक मांगल्य, पता नहीं नॉर्थ इंडिया में मंगलसूत्र बांधते हैं कि नहीं, मंगलसूत्र करके एक होता है, वो सोना उसके अंदर कुछ मोतियां काले और सफेद मोतियां होता है, उसका संख्या उसका भी पूरा विवरण है, कितना संख्या का होना चाहिए, कुछ चीजों की संख्या गणना नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत इसके अंदर बहुत गहराई है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि मांगल्यम तंतुनानेना मम जीवन हेतुना, हे भद्रे हे सौभगे महाभाग्यवान, तो मैं आपको मैं बांध रहा हूँ। क्या बांध रहा हूँ? मंगल सूत्र को बांध रहा हूँ, तंतु मतलब सूत्र। तो क्यों बांध रहा हूँ? मंगल्यम तंतुनानेना मम जीवन हेतुना, मेरा जीवन, क्या जीवन है? आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहे, ये आशा के साथ मैं बांध रहा हूं। देखिए कितना गहरा है। प्राय मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम बिल्कुल समान है, प्राय ये दीक्षा के समान है, क्योंकि उन्होंने मैं आध्यात्मिक जो अनुष्ठान मैंने लिया है मेरे जीवन में, पुरुष कहता है पत्नी को, उस आध्यात्मिक अनुष्ठानों में ये मेरा जीवन बन चुका है। आध्यात्मिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता मेरा जीवन बन चुका है, उसमें आप सहयोग देना। उस जीवन में आप सहयोग देना इस आशा के साथ में बांध रहा हूं। ऐसा नहीं कि पति सोचे कि अभी मेरे पति मिल गया है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, मैं जो बोलेगा वो लेके आएगा। आप मेरे पति हो, मैं जो बोलूंगी वो ये लेके नहीं आए, वो लेके नहीं आए, वो सड़ी को आप मेरे पति को घुमाने लेके गए, ये सब चीजें फालतू चीज है। अगर कोई व्यक्ति जानता है वास्तविकता में विवाह क्या है, तो हेतुना ने ना मम जीवन हेतुना, ये बहुत गहरा चीज है। मेरे जीवन के हेतु से मैं आपको स्वीकार कर रहा हूं, ताकि मेरा जीवन क्या है, मेरा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहे। अगर इस तरीके से विवाह रूप में स्वीकार नहीं करता है, इस रूप में विवाह किया नहीं जाता है, अस्तित्व में इन बातों को, सूक्ष्म विचारों को जाने बिना, उसको अपने जीवन में धारण किए बिना अगर विवाह को करते हैं या शादी कर लेते हैं, विवाह नहीं हो, पति पत्नी के रूप में नहीं रहे बल्कि दो कुत्तों के रूप में रह रहे हैं, ये सत्य बात है। क्या होता है, दो कुत्तों के झगड़े दोनों भोगते रहते, करते क्या, घर में जाओ आजकल किसी घर में जाओ, वो बाबा चलते, बाबा चलता, वही चलता है, और क्या है, क्योंकि जानते नहीं है हम दोनों साथ में क्यों हैं, वाई आर वी टुगेदर। एक शरण दिया पत्नी ने, पति ने शरण दिया, और पत्नी का कर्तव्य होता है उस पति का आध्यात्मिक जीवन को रक्षा करे, जैसे शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु का आध्यात्मिक आंदोलन का रक्षा करे, उसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य है उनके धार्मिक जीवन में। मान लो किसी कारणवश, क्योंकि माया बहुत प्रबल होती है, पति का पतन होता है, पतन होना मतलब इंद्रिय भोग में लग जाता है, वो पत्नी को प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, योजना बनाना चाहिए कैसे मैं अपने पति को वापस धार्मिकता में लाऊं, ये पहले अच्छा था, पता नहीं मेरे संगति से मेरे प्रगति होना चाहिए, आध्यात्मिक उनको कभी नाश नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति में मेरी आध्यात्मिक प्रगति है, ये विश्वास के साथ। तो बाद में कहता है हेतना ने ना बंदामी कंटे बंदामी सौभगे, कंटे गले में वो धारण करते कंटे बंदामी, ये उनका यज्ञोपवेद है, जैसे पुरुष लोगों को जनो संस्कार प्राप्त होता है, ये वो ये वास्तविकता में एक यज्ञोपवेद है, स्त्रियों का कोई जनु नहीं होता है, ये मंगल सूत्र ही जनु है, स्त्री का जनु पति पत्नी का जनु पुरुष धारण करता है, ब्रह्मचारी जो है वो तीन धागा धारण करता है, ये जो गृहस्थ हैं वो छह या नौ अलग अलग संप्रदाय के अनुसार धारण करते हैं, यानी पत्नी के जो धागा है वो पति धारण करता है, तो ये बहुत ही गहरा चीज है। सौभगे त्वम जीवे सदा शारदस्य काम, हे सौभगे सौभाग्यवती, तभी सौभाग्यवती होती है, विवाह होने के बाद सौभाग्यवती आ गया, विवाह के पहले वो सौभाग्यवती नहीं होती, तो तब उस समय सौभगे जीवे शरदस्ताम, उस समय लक्ष्मी का वास होता है। तो इस धारणा से विवाह संस्कार के समय वो स्त्री अभी लक्ष्मी होगी, साक्षात लक्ष्मी। इसलिए जब घर में विवाह होने के बाद बहू घर में आती है, जो सास ससुर क्या सोचते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आए, ऐसा विचार करते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म वैदिक संस्कृति के विचार है, तो आजकल ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में समस्या है। वो समस्याओं को सुलझाते 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 हमारे भजन जो है भज में रह जाता है, करना भी चाहता है तो कर नहीं पाता है, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक समस्या इतने सारे हैं। तो अभी आगे विवाह के समय ऐसा है, तो रक्षा करता है, चिंता हर परिस्थिति में आपका रक्षा करूंगा, इस प्रकार का एक आश्वासन देता है पति, और पत्नी जो है वो शरण को प्राप्त करती है, यह आश्वासन देती है मैं आपको जीवन भर सेवा करूंगी, मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगी, जो भी आप जैसा भी हो मैं आपका सेवा करूंगी। ये मनोभाव से जब दो लोग जुड़ते हैं उसको विवाह संस्कार कहा गया है। अभी इधर देखिए, विवाह हो गया, होने के बाद शब्द आया है सुकन्या चवनम प्राप्य, प्राप्त कर लिया, तो कौन सा पति को प्राप्त किया, एक तो पहले से वृद्ध, प्रभुपाद जी लिखते हैं ग्रैंड फादर के समान है, एक तो वृद्ध है, दुर्भगो दुर्लभो वृद्ध पंगु लंगु, कुछ भी होने पर भी कृष्ण गोपियों पे बात कहते हैं, जो पत्नी के लिए पति जो है परमेश्वर, पति परमेश्वर हो, ये परमेश्वर कुछ भी हो, ये विष्णु का ही स्वरूप है, समझ के करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो पत्नी को ऐसा सोचना चाहिए वैसे तो विवाह करने के लिए केवल एकमात्र व्यक्ति योग्य है, वो है विष्णु। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति है जो विवाह कर सकते हैं, शरण दे सकते हैं, लेकिन पत्नी को सोचना चाहिए। कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की योग्यता मेरे पास नहीं, सत्यभामा और रुक्मिणी जैसा मेरा वो सौभाग्य नहीं है, तो कृष्ण ने मुझे इस व्यक्ति को भेजा है एक प्रतिनिधि के रूप में। भगवान ने इस व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में भेजा है ये समझते हुए पति की सेवा करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जैसे कोई रेलवे टिकट वाला, ठीक है, रेलवे टिकट वाला, टिकट देने वाला, चाहे वो कोई भी हो, आपको टिकट से मतलब है, गवर्नमेंट ने जो टिकट छापा है वो व्यक्ति दे रहा है। उसी प्रकार भगवान ने जो जैसे योजना के अनुसार आपको पति के रूप में जिसको भी भेजा हो, क्या समझ के सेवा करो, उनको भगवान के प्रतिनिधि समझ के वे सेवा करो, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप बोलोगे महापापी है तो भी, एकदम घृणात्मक कार्य करता है तो भी, क्योंकि आपके कर्म में वो लिखा हुआ है। कुछ भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, वृद्ध हो, लंगू हो, पंगु हो, कोई भी हो, आपका पति है, उसका सेवा करना पति का कर्तव्य है। ऐसा करने से कितना शक्ति आता है मालूम, इतना शक्ति आता है। भगवान के जो सबसे शक्तिशाली चीज संसार में अगर कुछ है तो काल शक्ति, काल शक्ति को रोकने का शक्ति आता है। पुराणों में घटना आती है, एक स्त्री थी जिनकी पत्नी जो पति जो है वो ऐसे तो अपाहिज था, कुछ रोग से इतना इंद्र त्रुटि इंद्र भोग करते करते अपाहिज हो गया, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा खत्म नहीं हुई। वो पत्नी को बोलता है वो वेश्या के पास लेके जा, तो पत्नी उसको टोकरी में बिठा के लेके जा रही है, वृद्ध और एकदम अपाहिज कुष्ठ रोग हो गया, फिर भी उसके मन में वो काम वासना गया नहीं। पत्नी उसको उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए लेके जा रही है, रास्ते में ऋषि था तो उन्होंने देखा, अरे किस प्रकार का पति है, देखो इतनी सुंदरी इतनी अच्छी सुप्य पति पत्नी है, उनको त्रिकालज्ञ का मालूम पड़ गया, इस प्रकार की घृणात्मक कार्य में लगा रहा है, वो खुद वेश्या के पास जाना था, बोला भी पत्नी को बोला वेश्या के पास लेके जाओ, ये आश्रित भी इस प्रकार का व्यक्ति जीना ही नहीं चाहिए, मैं शाप देता हूं मर जाए, सूर्योदय से पहले मर जाए। तो ये पत्नी ने सुन लिया, ऋषि को कुछ बोल नहीं सकती, ऋषि को बोल नहीं सकती कुछ, तो क्या किया, ये पतिव्रता धर्म में देखिए कितना शक्ति है, सूर्योदय होगा ही नहीं, सूर्योदय होता नहीं, सूर्य का जो चलन है निमाश काल समृद्ध काल चक्र घुमाते रहते ना, काल चक्र घुमाने वाले सूर्य जो है वो 24 घंटा रथ पे चलता रहता है, वो बंद हो गया। पुराणों में सूर्य आता है, तो सूर्य बंद हो गया उस समय और घटना घटती है बाद में, इसी से वो सुग्रीव और वाली का जन्म होता है। अरुणी जो है वो सोचा अभी छुट्टी मिला, अभी हमेशा चलाते रहता, जाके देखता हूँ इंद्र सभा में, जाके देखता हूँ इंद्र सभा में, गए एक स्त्री का रूप धारण करके, तो इंद्र ने जन्म दिया, उनका वाली प्रकट हुए, वापस आए तो सूर्य ने उनको उन्होंने गर्भाधान प्रदान किया, और अरुणी पुरुष है लेकिन स्त्री का रूप धारण था, तो उनके सूर्य के पुत्र के रूप में उनके सुग्रीव प्राप्त हुआ, वाली जन्म लिया, सुग्रीव और वाली दोनों, इंद्र पुत्र और सूर्य पुत्र, तो ये तो रामायण की बात हुआ। लेकिन बात यह है कि सूर्य को रोकने का जो शक्ति है, काल शक्ति को घुमाने की जो शक्ति है, जो रोकने की शक्ति पतिव्रता है। इतना ही नहीं, सावित्री सत्यवान का स्टोरी सुनते हुए, तो सावित्री ने यमराज को भी सत्यवान को लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे चल रही है, तो सावित्री ने सत्यवान ने कहा, यमराज ने कहा चले जाओ, आप फिर भी जा रही है सावित्री पीछे पीछे, यमराज ने कहा ठीक है मैं आपकी जो पतिव्रता प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए, कहा मुझे पुत्र का वरदान, पुत्र हो, तुमने कहा मेरे पति के बिना पुत्र कैसे हो सकते हैं, अनेकों ने को एक नहीं है, पतिव्रता धर्म का अरुंधति वहां के समय में अरुंधति को दिखाया जाता है। कभी भी विवाह होता है, किसी का विवाह होता है, आप किसी जिस किसी का विवाह हुआ हो जानते होंगे, पता नहीं बहुत सारे जानते भी नहीं है, आजकल पूजा लोग करते भी नहीं, मालूम नहीं है, आपको बाहर लेके जाते पुरुष को, देखते दिखता है बाहर सुबह का समय नक्षत्र दिख रहा है, उसको जबरदस्ती बोलना पड़ता है यहाँ दिख रहा है करके अरुंधति नक्षत्र को दिखाते हैं। वशिष्ठ के नजदीक में, सप्तऋषियों के नजदीक में अरुंधति पतिव्रता, उसी से विवाह संस्कार आज तक जितने भी विवाह अगर सच में अगर सक्सेसफुल अगर हुआ है होता है वो तभी हो सकता है जब अरुंधति का आशीर्वाद। ये अरुंधति को इतनी शक्ति है, जितने भी विवाह है वो संपन्न हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो सक्सेसफुल हो रहा है, पति पत्नी सुखी से रह रहे, वो तभी है जब अरुंधति का आशीर्वाद है। कि पतिव्रता धर्म में कितना शक्ति है, अनेकों, एक नहीं दो नहीं। भगवान रामचंद्र जब जा रहे अरण्य, अरण्य कांड शुरू होने वाला है, अयोध्या कांड समाप्त होने वाला है, अत्रि आश्रम में अनुसूया, अनुसूया से प्राप्त किया, अनुसूया ने दिया सीता जी को, तुम ये वस्त्र, मैं वस्त्र देती हूँ, वस्त्र पहनो। वो सीता उस वस्त्र को वापस अयोध्या आने तक पहनी, उस वस्त्र को जब रावण स्पर्श नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, पूरा रामायण अगर देखा जाए, आचार्य कहते हैं कि यही वस्त्र था जो अनुसूया ने दिया सीता को, इसी के वजह से राम और सीता वापस आए। इतनी शक्ति है पतिव्रता धर्म। इससे प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज अ विक्ट्री, एक शब्द लिखते हैं, दिस इज हाउएवर, दिस हाउएवर ग्रेट वुमन में बी, शी मस्ट प्लेस हर हस्बैंड बिफोर इन दिस वे एंड दिस इज हर विक्ट्री, दिस इज द विक्ट्री ऑफ वुमन। ये है विजेता। जैसे एक पुरुष का जो विक्ट्री यानी उनका जीत है, जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करता है, अपनी कामनाओं को ऊपर जीत सकता है तो उसका विजय है। वैसे एक स्त्री का विजय क्या है, जब अपने पति को सेवा करती, पतिव्रता, पतिव्रता धर्म जो है पालन करना, उस स्त्री की विजय है। तो दोनों विजयी होंगे, नहीं तो क्या होगा, वो दोनों डूब जाएंगे, पति के नाम, पत्नी के नाम पे दोनों एकदम बिल्कुल संसार सागर में डूब जाएंगे। और डूब के भी ऐसा नहीं, डूबते डूबते एक दूसरे झगड़ा करते रहेंगे, तू तू मैं चलता रहे, तुम बड़ा मैं बड़ा, मैं ऐसे चलता रहेगा, स्वाभाविक है। देखिए पुरुष में स्त्री के सामने आते ही उसके अंदर एक पुरुषत्व व्यवहार था, मैं बड़ा हूं, ये 100% प्रवृत्ति रहता है। ये स्त्री को समझना चाहिए, ये भाव है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चवन मुनि में ऐसा था, he was irritable and temperamental, irritable था। अगर उनको ऐसा दिखता है कि कोई अपने बड़ा बनना चाहे, उससे बड़ा बनना चाहता है, उसको एकदम इरिटेट होता है। तो इसलिए हमेशा पति को, पत्नी को सर झुका के रहना चाहिए, उससे पति प्रसन्न हो जाते हैं। उल्टा जवाब नहीं देना, पति सोचते हैं कि बेचारी देखो मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस प्रकार तो पत्नी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर उल्टा जवाब दिया, झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए इवन इन द डीलिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन द डीलिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण के साथ जो डीलिंग्स हुआ करता था, उसमें भी सारे जितने भी पत्नियां थी कृष्ण के, वो सारे पत्नियां बड़ी बड़ी राजाओं की पत्नियां थी, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के सामने झुकी हुई थी। पतिम परम कोपन, परम कोपन, कोपन होने पर फिर बात आता है, चवन मुनि को महान क्यों कहा गया है। देखिए एक व्यक्ति की महत्ता उनके इंद्रियों का नियंत्रण में और उनका शास्त्रों का अध्ययन में इत्यादि चीजों में रहता है। कुछ स्वभाव के वजह से, मान लो कुछ दोष भी है, उस दोष को देख के ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो अरे क्रोधित करता रहता है, कुछ नहीं है, तो ऐसा ही प्रकृति, इसलिए प्रकृति के स्वभाव के अनुसार, गंगाम्बसम न कलु बुड्बुड भेण भंकैर ही ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मी। प्रकृति की वजह से कुछ व्यक्ति के अंदर दोष रहता है, कोई क्रोधित होता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई नकरा करता है, एक स्वभाव है, एक एक का स्वभाव रहता है। कोई मान लो कोई बैठा हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, कोई हल्ला निशान नहीं कर सकता, ये सब कुछ स्वभाव है। हम भी देखते हैं कि बहुत 20 साल से 25 साल से भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, शास्त्र रखते हैं, अच्छा जप करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका स्वभाव जो है क्रोधी होने का स्वभाव रहता है। किसी का स्वभाव इरिटेबल स्वभाव रहता है, वो कुछ गलत चीज़ को देख के सहन नहीं कर सकते, कुछ लोगों का स्वभाव रहता है, और कुछ मैनरिज्म बोलते हैं, ये रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। हम क्या करते हैं, शुद्ध भक्त मतलब ऐसा होना चाहिए, हम धारणा बना देते हैं, हम अपने हिसाब से एक धारणा बना देते हैं, जो उस धारणा में फिट होता है वो शुद्ध भक्त है, नहीं तो नहीं है। शुद्ध भक्ति, भक्त मतलब ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा सोचता हूं ऐसा होना चाहिए। भक्त मतलब क्या है, मैं जैसा सोचता हूं ऐसा होना चाहिए, उसमें फिट होता है तो है, नहीं तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं। एक व्यक्ति बहुत महान भी हो सकता है और स्वभाव की वजह से कुछ चीजें जो उस महत्ता के योग्य चीजें नहीं है, स्वभाववश हो सकता है, फिर भी महान है, फिर भी महान है। तो इसलिए स्वभाव को अलग करो, केवल उनकी महिमा को देखो, महत्ता को देखो। च्यवन ऋषि जंगल में रहकर तपस्या कर रहे हैं, महान है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, देखिए कि ए ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक च्यवन मुनि हैज द टेम्परमेंट ऑफ ऑलवेज वॉन्टिंग टू बी सुपीरियर पोजिशन। एक टेम्परमेंट है, टेम्परमेंट मतलब स्वभाव है, एक मैनेज प्रवृत्ति है, तो हर व्यक्ति के अंदर रहता है इसको, और वो उनके जीवन में कलंक नहीं है। जैसे चंद्रमा में धाग रहता है, फिर भी चंद्रमा को सुंदर है, देखते रहते चंद्रमा को कितना सुंदर है बोलेंगे, तो दाग रहेगा हर व्यक्ति के अंदर, कोई स्वभाव की वजह से धाग रहेगा। इसलिए लोग गोस्वामी पाद ने कहा अपराध मत करो, कौन सा श्लोक है, दिष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे, वपु मतलब शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, वपुश्च दोषे दृष्टे स्वभाव जनिते, स्वभाव के अनुसार कुछ दोष जरूर रहता है, लेकिन उसको देख के उनकी महिमा को मत भूलो, डोंट फॉरगेट हिज ग्रेटनेस। तो इस प्रकार आगे, हाउएवर ग्रेट ए वुमन मे बी, शी मस्ट ऑलवेज प्लेस हर हस्बैंड बिफोर इन दिस वे, दैट इज टू से शी मस्ट बी रेडी टू कैरी आउट हर हस्बैंड ऑर्डर्स एंड प्लीज हर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कहा गया है प्रीणयामास चित्तज्ञः, प्रीणयामास चित्तज्ञः। तो कैसे कार्य करना चाहिए, एक पत्नी को उनको पति को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करना चाहिए। जब पति नहीं होते हैं अपने घर में, कहीं बाहर गए रहते हैं, कुछ आभूषणों को धारण करना, वैसे तो विरह में ऐसे बैठे रहना चाहिए, अच्छा चीज़ों को पकवान बना के खाना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और जब पतिदेव वापस आते हैं घर में, उस समय सुंदर सुसज्जित होके उनको प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेकों व्यंजनों को बनाना, जो भी उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करना पड़े सब कुछ करना होगा, ये उन पत्नी की भक्ति है, इसको देख के भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे प्रीणयामास चित्तज्ञः, चित्तज्ञः का अर्थ क्या है, उनके पति के मन में क्या चल रहा है वो जान लेना चाहिए, क्या दुख है क्या सुखी है, दुख का कारण क्या है, इस प्रकार सोचना चाहिए। इसलिए वैदिक वांग्मय में व्याभाषा में पत्नी एक शब्द है, भार्या एक शब्द है, पत्नी भार्या और कोई शब्द है, अर्धांगी एक शब्द है, अर्धांगी भार्या पत्नी। अर्धांगी का अर्थ क्या है, अर्धांगी का अर्थ है कि पति का आधा जीवन वो है, आधा जीवन वो है, ये अर्धांगी, यानी अभी पति के जो भी पुण्य है उसके ऊपर आधा भाग मेरा है, लेकिन पति के पाप के ऊपर उसका आधा भाग नहीं होता है। ये बड़ा योग, बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए अगर पति पापी है उसको सेवा करने पर भी पाप नहीं लगता, बल्कि केवल उनको पुण्य मिलता, पतिव्रत होता है। लेकिन पति पुण्य करता है उसका आधा भाग उसको मिलता है। अगर पति कोई पुण्य कार्य करती है तो पत्नी को, पति को नहीं मिलता, अगर पत्नी पाप करती है मिलता है। देखो बेटा बहुत डेंजरस है, दो बार सोच लेना शादी करने से पहले, बहुत बुरा सौदा है। इसलिए शरण, उससे वो खुश रहती है, ठीक है जो भी मेरे पतिदेव, अगर पत्नी के वजह से पति जो है जप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जितना जप करता है ना उसका आधा भाग उसको मिलता है। धार्मिकता हिसाब से बता रहा हूँ, ये आध्यात्मिक जीवन तो कुछ अलग चीज है, लेकिन फिर भी बात यह है कि वो जितना धार्मिक कार्य करेगा वो पति को, पत्नी को मिल जाता है। इसलिए आप अपना धर्म करो, ये मत सोचो मेरा पति ऐसा ऐसा, वो कैसे भी रहने दो, आप अपना कर्तव्य करो, जैसे वो उदाहरण बताया ना, वो पति, वो वृद्ध पति को लेके जा रहे थी, वो पापी व्यक्ति था, वो पाप कार्य में सहयोग दे रही कोई बोल सकता है, लेकिन अब तक धर्म को निभा रही है, लेकिन फिर भी उनको पतिव्रता धर्म में नष्ट नहीं हुआ। इसलिए चित्तज्ञा ये देख लेना, ये विचार कर लेना चाहिए, चित्तज्ञ उनके मन में क्या चल रहा है, उनका सुख दुख जो है वो समझ के अपनी सेवाओं को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। जैसे कोई विवाहित दंपति है, उनको अर्धांगी बात अर्धांगी के चल रहा है, यानी उनके जो पति के जितने भी आधा भाग जो है यज्ञ का फल का आधा भाग उनको प्राप्त होता है, उसको अर्धांगी का। भार्या ये दूसरा शब्द है, भार्या करता है जो भरण करती है, यानी पत्नी के पति के जितने भी सुख दुख है उसको भरण करने वाली है उसको भार्या। तो इधर ये चित्तज्ञ ये शब्द के द्वारा भार्या शब्द के सूचित किया जा रहा है, पति का सुख को अपना सुख मानना, पति का दुख को अपना दुख मानना, यानी उनके मन में जो भी चीजें हैं वो अपना अपना मान के चलना, भरण कर लेना, ताकि उनके पति के कोई टेंशन ना, ताकि वो भजन कर सके, क्योंकि मन में कोई कुछ टेंशन है कुछ ऐसा है, आर्थिक समस्या भी क्यों ना हो या कुछ अन्य समस्या भी क्यों ना हो, वो पत्नी को ये मान लेना चाहिए कि उनकी समस्या मेरी है, उनको आश्वासन है आप चिंता मत करो मैं हूं ना, इतना बोलने इतना तो कम से कम बोलना चाहिए, ऐसा नहीं क्या ये आपका काम है मेरा थोड़ी ना, नहीं ऐसा। चित्त यहां वो चित्त में क्या चल रहा है, कौन सा सुख चल रहा है कौन सा दुख चल रहा है, उसको लेके अपना मान के कुछ सलाह देना, ये सलाह भी अकेले में देना चाहिए, बाहर आके सलाह नहीं देना है, पत्नी को अगर सलाह देना दे सकती है लेकिन बाहर पब्लिक में नहीं, दे भी दिया उस सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, पति को इस प्रकार का भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, दे दिया बस चित्त में। और तीसरा शब्द है पत्नी, अभी देखिए धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म भार्या धर्म अर्धागिनी कहा नहीं कहा जाता, इसलिए तीन शब्दों में श्रेष्ठ शब्द है टॉप मोस्ट है पत्नी। तो क्यों है, क्योंकि वो पत्नी शब्द के द्वारा ये सूचित किया जा रहा है वो जो स्त्री पति को भक्ति मार्ग में कैसे लाना है कैसे प्रवृत्त करना है, जो हमेशा ये सोचती रहती है। इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य में पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता, जो धर्म धार्मिक कार्य में जो भाग लेती है उसको पत्नी कहा गया है, जो सुख दुख को भरण करने वाली को भार्या कहा गया है, जो केवल पुण्य को स्वीकार करने वाले को अर्धांगी कहा गया है। इन तीनों में टॉप मोस्ट कौन सा है, पत्नी। क्यों, अभी मुझे क्या करना है, पत्नी सोचना चाहिए पति के धार्मिक कार्यकलापों में मुझे सहयोग देना है, अगर वो नहीं कर रहा है उसको कैसे प्रवृत्त करना है, हमेशा योजना बनाते रहना चाहिए। माता पिता सोचते पड़ोसी हम तो भक्ति करते पतिदेव नहीं करते क्या करें क्या करें, अरे भारतीय स्त्री होती है ना बहुत बुद्धिमान होती है, उनको मालूम है पतियों को कैसे कैसे प्रवृत्त करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उनके पास ऐसी बुद्धि है, भगवान ने ऐसी बुद्धि दिया है, वो पतियों को कैसे भक्ति में लाना है कैसे करना है उनको मालूम है, सूझबूझ उतना रहता है, लेकिन वो करना चाहिए जरूर। प्रणयामासा चित्तज्ञ, बिल्कुल ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी, अप्रमत्ता अप्रमत्ता पागल हुए बिना, प्रमत्त मतलब पागल, यानी दूसरे शब्दों में भयभीत नहीं होना चाहिए, नेवर बी डिस्टर्ब्ड, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कितना भी उत्पाद भी मच जाए ना किसी कारण की वजह से, चाहे पारिवारिक सामाजिक या आर्थिक वजह से, अगर इस संसार में अगर कोई चीज कोई व्यक्ति है ये सामाजिक पारिवारिक आर्थिक जो समस्याओं को सुलझा सकता है वो ये की है एक पतिव्रता स्त्री, और कोई कर नहीं सकता, वो पुरुष के हाथ में नहीं है, परिवार को संभालना पुरुष के हाथ में नहीं है, केवल पतिव्रता स्त्री के हाथ में, अगर स्त्री अच्छी है परिवार अच्छी चलेगी, पति कितना भी दुष्ट हो चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सत्य बात है। हमने अड़ोस पड़ोस में गांव में हमारे यहाँ देखा है जिस घर की स्त्री भक्तिवान है पतिव्रता है वो घर में कुछ समस्या नहीं होती, जिस घर में स्त्री का कुछ समस्या हमेशा डिस्टर्ब रहती है, वो परेशान हो जाती है, बराबर इस प्रकार व्यवहार नहीं करती जिस प्रकार इधर श्लोक में वर्णन हुआ है, वो घर में हमेशा समस्या रहेगी। इससे उसको गृहिणी कहा गया है, क्योंकि घर को देखभाल करने वाली है। देखिए घर का काम काज जो है वो पुरुषों से नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका प्रवृत्ति ऐसा नहीं, उनका मनोभावना ऐसा नहीं है। अगर आप आशा करो घर का काम करेगा अच्छा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि गड़बड़ कर बैठेगा। इससे उनको जो बाहर जो जो करना है करो, अंदर जो है मैं प्रेसिडेंट हूं। घर का प्रेसिडेंट कौन है? नहीं, अगर मान लो कि गृहस्थ से पूछो प्रभु जी आपके घर में प्रोग्राम करो, हाँ बोलो, फोन करके पूछ के बताता हूँ, तो मतलब क्या है? वो निर्णय नहीं ले सकता। अभी मंदिर में जो बोलो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर के अंदर जो है वो उसका चलता नहीं है, उसको इसे गृहिणी कहा गया। She takes care of everything. अगर वो करने जाएगा तो गड़बड़ करेगा, तो ये बात ये है। ये इससे पता चलता है ब्रह्मचारी आश्रम कैसा होता है, बताओ। कोई स्त्री तो रहती नहीं उधर, इसलिए कोई इधर इधर टकरा हुआ है, कोई कॉपी इधर लगा हुआ है, कोई गमछा इधर लगा हुआ है। आप देखो कि सुबह मान लो कि आपको चादर को फोल्ड करना है, जब एक स्त्री उसको फोल्ड करके आपकी पति जो फोल्ड करती है कितना परफेक्ट रहता है, एकदम है कि नहीं, पूरा एकदम बिल्कुल स्क्वायर रहता है। अगर पति करेगा तो कोई इधर देगा, कोई चपाती बनाने जाएगा तो चपाती कैसे रहेगा, पति जो बनाता है चपाती वो ऑक्टोपस जैसा रहेगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है, पता नहीं कैसा एकदम ज्योग्राफी इसका बहुत बड़ा ज्योमेट्री बहुत फर्स्ट क्लास रहता है। क्योंकि भौतिक चीजों के साथ कैसे व्यवहार करना, उसके साथ डीलिंग जो है, भौतिक बुद्धि जो है स्त्रियों में ज्यादा रहता है, बाय नेचर से, ये कहीं इधर इधर की बात नहीं है। इसलिए उनको गृहिणी है होने के नाते, वो अगर घर को अच्छा रखना है तो कभी भी डिस्टर्ब मत होना, हमेशा ये समझो मेरी कर्मों में ऐसा पति लिखा है तो क्या करें, चलो चला लेते हैं, ऐसे ही रखा है तो क्या करें, मेरा कर्म है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। आगे अनुवृत्ति भी ऐसा समझते हुए, बिना डिस्टर्ब हुए अनुवृत्ति भी सारे कार्यों को करो, सेवा करो, 24 घंटा सेवा करो। जो स्त्री आलसी है वो समझना चाहिए उस घर में निश्चित रूप में भूत प्रेत है, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। आप देखो सुबह सुबह जल्दी पति से जल्दी उठ जाना चाहिए पति, और पूरा स्नान वान करके घर का आंगन साफ करके रंगोली वंगोली लगा के पूरा सब काम सब, और ये जो है ये देख के पति को प्रेरणा आता है कि मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति में लगूं। ये वैदिक संविधान है, ये वैदिक सभ्यता है, अगर इसको पालन नहीं किया जाए संसार में कोई सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं, परलोक की बात तो छोड़िए, संसार में सुखी नहीं तो अगले लोक में कौन सुख होगा, कोई सुखी नहीं होगा। हरे कृष्णा। अगर ऐसा प्रश्न पूछिए जो मैं जवाब दे सकता हूं।
लड़के को भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो करता है तो असुरी प्रवृत्ति का है, लेकिन अगर पेरेंट्स करते हैं उसको दैट इज ओके।
हाँ दैट इज ओके, वही
मतलब अगर उधर से मतलब बॉय की
साइड वही है, दैट इज दैट इज ओके नहीं है, दैट इज द थिंग, बाकी जो है वो है ही नहीं।
नहीं जैसे होता है ना पेरेंट्स भी कई बार रिजेक्ट करते रहते हैं, नहीं ये नहीं वो नहीं, उसमें कई सारे वो निकाल,
वो जाने ना उसका काम
उनके लिए।
हर एक कन्या के जो पिता है उसको एक्चुअली रिजेक्ट जो है वो कन्या के पिता को करना चाहिए, लड़के के पिता जो है वो क्या है। देखिए रामचंद्र जब विवाह हुआ दशरथ का क्या रोल था बताओ, कुछ नहीं था, लड़के के पिताजी का कोई रोल नहीं, उसको सन्यास लेना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व होता है ना ये समझना चाहिए वो शादी करना चाहता है। इंटरेस्ट दे रहा है एक्चुअली, लड़के को भी इंटरेस्ट ही होना चाहिए, उसके पिताजी का इंटरेस्ट है भाई। ठीक है, वो सुना चाहिए कि अच्छे परिवार का है कि ये देखना अच्छे, बस उतना ही। लड़की कैसी है क्या उसे का मतलब, उसको अच्छा परिवार का इतना है बस। क्योंकि ज्यादा चिंता किसका है, देने वाला का लेने वाला का है? देने वाले की चिंता है, है कि नहीं? देने वालों की चिंता है, हमारी लड़की अच्छी घर में जाना चाहिए। तो इतना है कि वो माता और लड़के के पिता से पढ़ के बोलना चाहिए, आपका अच्छे परिवार के तभी तो बात करेंगे आगे बात, है कि नहीं? अच्छा परिवार का है देखना चाहिए, बस उतना है। ठीक है, हाँ पूछिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, वैदिक साहित्य के तो पति 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 पत्नी की डेफिनेशन आपने बता दी, हमारी जो सभ्यता की डेफिनेशन है उसका नाम है हस्बैंड। पहले तो हंसते हंसते बैंड बजवा देना उसका, फिर हमेशा के लिए हंसना बंद हो जाएगा।
वो सभ्यता ही नहीं है प्रभु जी।
हाँ वो आधुनिक सभ्यता,
सभ्यता ही नहीं है
वो आधुनिक जो, और वाइफ का मतलब हो गया वरी इन्वाइटेड।
मेरा प्रश्न का मेरा जवाब आपने सुना नहीं, वो सभ्यता ही नहीं है। आप कभी बोलते हो कुत्तों की सभ्यता है? कुछ कितना बोलो कुत्ता बोलोगे उसका, उसको कुत्तों की सभ्यता थोड़ी ना बोलोगे, कुछ बोलोगे ना, सारे कल्चर है टॉल, सारे सिविलाइजेशन है टॉल। हाँ फिर थोड़ा प्लस कर लेते बात आप लेंगे।
हरे कृष्ण बहुत सुंदर आपने बताया प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि जब आपने बताया कि पुरुष का 50% स्त्री को मिलता है पुण्य बताया, तो क्या पुण्य मिलता है या भक्ति भी मिल जाती है उनको 50%?
भक्ति जो है भक्तों की संगति से प्राप्त होता है, अलग बात है। लेकिन जब ये देखिए जो सारे बातें जो हो रही है वो धार्मिक स्तर में हो रही है, एकदम बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर में नहीं हो रही है। जो वो धार्मिक स्तर की बात है जो आध्यात्मिकता में सहयोग दे सकता है, ये नाम जब जो है पूर्ण आध्यात्मिक होने के नाते है उसका फल ट्रांसफर नहीं होता, इज नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। लेकिन जो यज्ञ का पुण्य धर्म धार्मिक कार्य अनुष्ठान उसको ट्रांसफरेबल है। जैसे पुरोहित क्या करता है, पहले आज्ञा लेता है, पहले आपसे संकल्प लेने के समय लेता है, मंत्र उच्चारण कराता है कि मैं मुझे ये यज्ञ विधि कर्म विधि मालूम नहीं है, इसलिए मैं फलाना व्यक्ति जो इस गोत्र के है उसको मैं अधिकार दे रहा हूँ मेरी ओर से वो यज्ञ करे, और बाद में दक्षिणा के बदले में ये यज्ञ का फल मुझे प्रदान करे, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन हाँ उसमें ट्रांसफरेबल है, लेकिन ये आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो ट्रांसफर नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अभी वो आध्यात्मिकता के लिए त्यक्त्वा स्वधर्मान् चरणाम्बुजं हरेर् जन्नपक्वोत्पते ततो यदि, वो श्लोक याद करना चाहिए। वैसे तो माता पिता का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता साधु बनने के लिए, लेकिन अगर वो आश्रम आ गया उसके पास माता पिता को आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। प्राप्त करने की बात तो छोड़िए, देने की हो जाती है। अभी वो माता पिता उनके माता पिता नहीं है, अभी वो उनके माता पिता है, वो माता पिता के माता पिता बन गया। कृष्ण की शरण में इतनी शक्ति है, भले ही व्यवहारिक रूप में हम उनको माता पिता के रूप में देखते हैं, जो भी कृष्ण का शरण लिया है आश्रम आया है वो केवल उनकी माता पिता के माता पिता नहीं है, सारे जगत के माता पिता है। व्यवहार के रूप में उनको माता पिता को प्रणाम करता है, माँ बोलता है पिता बोलता है अलग बात है, लेकिन उसका सामर्थ्य इतना हो जाता है, he becomes a जगत गुरु, सारे जगत के गुरु होता है। कैसे गुरु होता है? अरे मुझे उसका शास्त्र नहीं है तो मैं तो नया नया हूँ, सारे जगत के गुरु हो। किस रूप में? आप दिखाए जगत को, देखो कि संसार को छोड़ के भी रह सकते हैं, कि दिखा रहे हो। ब्रह्मचारी लोग एक प्रतीक है, किसका प्रतीक है? सारे जगत को एक प्रतीक है, देखो घर के बिना रह सकते हैं, धन के बिना जी सकते हैं, कृष्ण का शरण लेके अपना जीवन आराम से आनंद से रह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, इसके लिए गुरु है। हर व्यक्ति सोचता है पैसे नहीं तो कैसे जिएगा, घर नहीं तो कैसे जिएगा, जी रहे ना, इतने लोग जी रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा, लेकिन ही बिकम्स अ गुरु.
परिवार में कन्याएं भी हैं, वो आसपास के वातावरण से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि उनको शिक्षा देने के लिए वो शिक्षा का पालन नहीं कर पाते. तो वो जो भक्तों के लिए बड़ी दुविधा है, तो कहीं पेरेंट्स में इच्छा होती भी है शिक्षा पालन करने, कहीं वो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. आजकल ऐसे ही काइंड ऑफ चलता है. तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि हमने कल्चर सेट नहीं कर पाएंगे जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है. तो इसके लिए आपका क्या कुछ समाधान बता सकते हैं?
आपने पहले कहा शहरी जीवन है, पहला शहरी जीवन जीवन होता है क्या, पहले बात के बाद में कहा बहुत सारे भक्त हैं मंदिर में, बाहर की सभ्यता के द्वारा प्रभावित है तो कैसे करें. बात यह है, शहर में रहने रहो, गांव में रहो, अमेरिका में रहो या कहीं भी रहो, सत्य परिवर्तन नहीं होता. ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ. अभी आप बोलोगे प्रभु जी कैसे करें, पहली बात है कि कोई भी चीज तभी किया जाता है जब उसके बारे में कोई बोलता है. हमने जब करना शुरू किया किस क्यों, किसने बोला, लेकिन जब आप ये जो सामाजिक वैदिक संस्कृति सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था वैदिक पारिवारिक व्यवस्था उसके बारे में जब बोलना शुरू करोगे बिना डरे, सत्य को यथारूप में पेश करोगे, तब लोग स्वीकार करेंगे. प्रभुपाद जी को किसी ने कहा आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस करो ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बहुत लोग आ जाए. कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्रभुपाद जी, जैसे सिद्धांत में भी प्रभुपाद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और बोले, खुलेआम बोले और लोग जुड़े, है कि नहीं. देखिए आज मैंने प्रवचन दिया, उसमें जो भी बातें किया, वास्तविकता में बहुत सारे लोगों को दुख लगना चाहिए था इधर जो बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को दुख लगा? सभी लोगों ने सोचा ये सही बात है, भले ही व्यवहार में लाए नहीं लाए, लेकिन सब लोगों को ऐसी लगा कि ये सही बात है, जो कह रहा है वो सही बात है. तो उन चीजों के बारे में बिना डरे बोलना चाहिए. वी शुड टेल, वी शुड टॉक अबाउट इट. बोलते 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 क्या होगा, ये भी प्रचार है. गीता भागवत को प्रचार करना मतलब गीता भागवत को सपोर्ट करने वाला संस्कृति को भी प्रचार करना. प्रभुपाद जी ने कहा कल्चरल रेवोल्यूशन. कल्चरल रेवोल्यूशन इसका अर्थ यह नहीं कि मायापुर में भी पिज्जा मिलता है, नहीं. वो कल अरे ऐसा हो गया अभी हालत हमारा. देखो कल्चरल रेवोल्यूशन लाया, मायापुर में पिज्जा मिलता है. अरे ये कौन सा कल्चरल रेवोल्यूशन है? कल्चरल रेवोल्यूशन मतलब क्या है, जो अफ्रीका के निगो व्यक्ति भी आके क्या खाता है, दाल भात खाता है, दालमा खाता है, पराठा खाता है, ये कल्चरल रेवोल्यूशन. ये नहीं कि बचपन से पराठा खाते आ रहे वो आश्रम में आके पिज्जा खाने लगा. नहीं, पहली बार मायापुर गया था, किसने कहा पूरी महाप्रसाद देखा, दिखता तो केक जैसा. तब तक मैंने केक खाए रहते जीवन में, केक मतलब उसके अंदर अंडा रहता है वैसा है ना, हमको हमारा बचपन माना गया था केक बाहर का कुछ चीज नहीं खाने का. केक लाया तो डर लगा, मैं छूने को बोलता है महाप्रसाद बोलता है और बाद में केक है वो. पहली बार फर्स्ट डे इन मायापुर, सुबह सुबह की बात है, वो मिलता है ना उधर बाहर 6:30-7 बजे मिलता है ना, कोई लेके आया, युद्ध कैंप में गए थे. डरने लगा मैं, लूं मैं महाप्रसाद, टेक इट टेक इट. मैं बोला केक है ना, हाँ केक करो केक महाप्रसाद बोला. लेकिन मैं पूछा अंडा है ना इसके अंदर, ये नो एग, एग लेस. ये कल्चरल रेवोल्यूशन है क्या? सो दिस इज द थिंग, स्पीक अबाउट. जैसे एक और एक उदाहरण होता है, जैसे बीमार पड़ते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे वैदिक सभ्यता के, बीमार कोई पड़ता है तो वैद्य को बुलाते, आयुर्वेदिक दवाई देता था आपको. लेकिन जैसे बीमार पड़ा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, एलोपैथी के पास जाना, क्यों भाई मरना है उधर जाके, सीधा सीधा क्यों, क्यों एक्चुअली वो साइंस साइंस है ही नहीं। सामने आपका गाय का प्रोडक्ट का स्टॉल है, अंगराग लगाओ, ऑइंटमेंट क्यों लगाते हो? तो इसके बारे में बोलना चाहिए। वी हैव टू प्रीच एज लीडर्स, जो कॉन्ग्रीगेशन लीडर्स है, ब्रह्मचारी है, भागवत को पढ़ो, भागवत को पढ़ो। लेकिन वो भागवत को पढ़ने के पीछे जो माहौल है, संस्कृति है, उसको भी तो, जैसे आपने आम रस दिया, पीयूष दिया, लेकिन उसको पीने के लिए लोटा नहीं दिया, होगा नहीं होगा? वो होगा, किसको होगा? वाले ब्रह्मचारी को हो जाएगा। ब्रह्मचारी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कैसे भी तो खा जाएगा। मान लो बड़ा जग दिया, लोटा नहीं दिया, तो क्या करेगा? जग से पी लेगा, है कि? लेकिन वो सिस्टम नहीं है। ब्रह्मचारी शतमान कटा, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी शहर में रहे, जंगल में रहे, उधर उधर जाके प्रचार करेगा, उधर जंगल में भेजो तो बंदरों को भक्त बनाएगा, शहर में भेजो इधर उनको भक्त बनाएगा, काम है। लेकिन बट यू आर टॉकिंग ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी। व्हेन यू से सोसाइटी, देन दिस कम्स इन द पिक्चर। लेकिन यू हैव टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? अगर ब्रह्मचारी को कोई एप्पल देता है, अरे आपने खाना शुरू कर दिया, तो ये कैसे खा रहे हो? ऐसा हुआ, मैं कहीं किसी घर में गया था, किसने लखनऊ जी आप एप्पल लेंगे तो दे के रखे, मैं उसको लिया, खाना शुरू कर दिया। ऐसे देख रहे हैं कौन से काम, कौन से जंगल से बंदर आया करके। डजंट मैटर टू अस, इतना हद तक कि वास्तुशास्त्र कहता है जहाँ सन्यासी निवास करते हैं, ब्रह्मचारी निवास करते हैं, वो वास्तु शांति की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर में हो सकता है। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में वास्तु शांति कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितना भी वास्तु शांति करो ऐसी आती शांति बिना वास्तु शांति की शांति लेकिन इतना आवश्यकता है, भगवान है लेकिन सामने हो सकता है, क्योंकि आने वाले कौन है? लास्ट क्वेश्चन। क्या चीज? अरे बहुत डेंजरस है वो। नहीं नहीं आई ये है, लेकिन उसको बहुत सावधानी से, उधर एक माँ होना चाहिए जो सबको माँ के रूप में व्यवहार करती है, माँ के रूप में वो देखभाल करती है, ठीक है। एक वयोवृद्ध कन्या, मतलब वृद्ध कन्या मतलब जो जो अभी सबको समान दृष्टिकोण से देखने की के अंदर भाव आ गई, ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है मेरा है, वो भाव से मुक्त हो जाए। अभी कहीं 45-45 साल हो जाता है ना कोई स्त्री का, उस समय वो अन्य जो बालिकाओं को भी अपनी बालिका के रूप में देखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक तरीके से आता है, वो नेचुरल आ जाता है। समाज में ऐसे कुछ लोग होंगे उनके निरीक्षण में हो, वो भी माँ जैसी है, वो रह सकते हैं। अगर वैसी नहीं है तो IVF बंद कर दो, उसको उत्पात मचेगा। ऐसी स्त्री के निरीक्षण में नहीं है तो IGF को बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ऐसी कोई माता है तो देखभाल करने के लिए सबकी माँ के रूप में बात नहीं कर सकते, ठीक है? और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको कृष्ण का स्मरण करना है, पति ना पति का स्मरण करना है, लेकिन सब्जेक्ट वो है तो क्या कर सकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भारतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।